प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे भक्ति काल के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले एक सूचना या रिक्वेस्ट कह लीजिए और फिर एक समाचार के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, रिक्वेस्ट या सूचना, इसे आप जो भी नाम दे दें, यह है कि देखिए, अभी आईएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। मेरे पास कल एक मेल आया विवेक कुमार आनंद का, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न लिख करके मुझे भेजे हैं जो अभी यूपीएससी अपने कैंडिडेट से पूछ रहा है, लेकिन चूंकि वो आधा अधूरा है, स्टूडेंट की बैकग्राउंड नहीं, यानी कि कैंडिडेट की बैकग्राउंड नहीं है, डिटेल्स में सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इसीलिए मैं उसे लेकर के आपके सामने अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक अच्छी बात उसमें यह उन्होंने लिखी है कि अफगानिस्तान के बारे में प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न यह था कि अफगानिस्तान में जो घटना हुई है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि क्या मैंने आप सबसे यही बात नहीं कही थी कि जो अफगानिस्तान में घटना हो रही है, इसे आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही बनेगा कि इस घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है या क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर कल आप लोगों ने दूरदर्शन का न्यूज देखा हो तो उसमें भी इसी पर ही डिस्कशन आया था कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रभाव की चर्चा मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर की भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप में से कोई सही मायने में इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर जाइए, वहां जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे करके जो बाहर आते हैं उनसे मिलिए, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो मुझे ईमेल में बातें जानने को मिल रही हैं कि वो बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से आपसे बातें करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे क्या क्या उगलवा पाते हैं, मैं उगलवा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या क्या कहला सकते हैं। तो बकायदे आप कुछ पॉइंट्स बना करके ले जाइए ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा अटेम्प्ट है, ग्रेजुएशन किसमें किया है और इस तरीके से कैसे आपने तैयारी की। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लीजिए, किस स्टेट के रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शुरुआत में उन इसी बैकग्राउंड से होते हैं, आपने अपनी रुचियां क्या भरी थी, और इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए उसकी लिस्ट बना लीजिए और फिर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए घर पर आकर के, और मुझे मेल कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे आपका भी थोड़ा सा अभ्यास होगा और आपको भी लाभ होगा, और आपके माध्यम से दूसरे स्टूडेंट तक जब मैं इसे पहुंचा पाऊंगा तो उन्हें भी थोड़ा लाभ मिल सकेगा। तो यह मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है। दोस्तों, जो मैं आपसे खबर की बात कर रहा हूं, एक वो ये है कि अफगानिस्तान में अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप देख रहे हैं कि चीजें काफी क्लियर होती चली जा रही हैं और स्थिर भी होती चली जा रही हैं। भारत के संदर्भ में जो एक बड़ी बात है वो ये है कि कतर में बकायदे जो तालिबान के जो लीडर हैं और जो हमारे राजदूत हैं वहाँ, उनके बीच बातचीत हुई है। आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था दो तीन दिन पहले, जब मैं अफगानिस्तान और विश्व के दो देश हैं उनके बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि कतर एक ऐसा देश है जो भारत के साथ, जिसके बहुत अच्छे संबंध हैं, और तालिबान के साथ तो है ही है, क्योंकि तालिबान का जो राजनीतिक कार्यालय है वो कतर में है। तो इस लिहाज से कतर जो है भारत और तालिबानियों के बीच में एक संबंध स्थापित करने में या संवाद स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो बातचीत हुई और उसमें बहुत क्लियर तरीके से दो तीन बातें सामने आईं, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात जो कही गई, भारत ने साफ साफ कह दिया कि वहां जो भारतीय हैं वो सुरक्षित होने चाहिए और जो तालिबानी हैं वो अपने इस देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करें। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और एक और बड़ी बात जो वहां एक समूह ने कही है वो ये है कि जो कश्मीर है वो भारत का अपना मामला है, हम कश्मीर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी नीति का अंग नहीं है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह एश्योरेंस सबसे बड़ा एश्योरेंस है, बहुत बड़ा आश्वासन है। आप यूं कह लीजिए कि यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय। आगे अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, क्योंकि अब तालिबान भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ लिबरल पॉलिसीज डिक्लेयर कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका विकास हमारी प्राथमिकता है, हम विश्व के देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। धीरे 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 अब स्थितियाँ सामान्य होंगी, उसका चेहरा उभरता चला जाएगा, फिर हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे। तो दोस्तों, केवल एक यही महत्वपूर्ण खबर थी। मैंने आप सबसे कहा था कि जो देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार के लक्षण मिले हैं उस पर आप सब थोड़ी तैयारी करें, और इस लिहाज से मैं आज आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद शायद आप अपने तैयारी को एक और आप दिशा दे सकेंगे, जो भी आपकी तैयारी रही है उसे ठीक ठाक तरीके से पूरा कर सकेंगे। और यदि वक्त मिला तो डेफिनेटली मैं इसी के माध्यम से इकोनॉमिक्स की तैयारी के बारे में आगे चलकर कुछ बातें करूंगा। अब फ्रेंड्स आते हैं आज के मुख्य विषय पर, जो मैंने कहा कि भक्ति काल। यह विषय मैंने क्यों चुना, बहुत साफ इसका कारण है। आपको मालूम है कि कल एक 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है प्रभुपाद स्वामी जी की इस स्मृति में, 125 रुपए का स्मारक सिक्का। ये कृष्ण भक्त थे। थोड़ी सी बात मैं प्रभुपाद स्वामी जी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि प्री में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि प्रभुपाद स्वामी जी का संबंध कृष्ण भक्ति से रहा है, इसीलिए मैंने मुख्य विषय के तहत भक्ति काल को चुना है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन्स की दृष्टि से भी। दोस्तों ये जो प्रभुपाद स्वामी हैं, 1886 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इन्होंने समाधि ली। आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने इन्हें लंबी उम्र दी। इनका जो नाम था ओरिजिनल वो अभय चरण डे था। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। चूंकि ये न्यूज का हिस्सा था, रेडियो न्यूज का हिस्सा रहा है, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो इन सब पर निगाह रखते हैं कि न्यूज में क्या आ रहे हैं, समाचार पत्रों में क्या छप रहे हैं ना, वहां से वो चीजें उठाते हैं। तो चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, हम 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में जब भारत में असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था, उस दौर में जो प्रभुपाद स्वामी थे, जिनका नाम उस समय अभय चरण डे था, उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये कलकत्ता में है। तो उस समय आपने पढ़ा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, वो अदालतों में नहीं जाते थे, जरह नहीं करते थे, बहुत से लोगों ने इस तरह से कदम उठाया, स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर चले गए, जाना उन्होंने बंद कर दिया, हमारे जो अपने कॉलेजेस थे स्वदेशी मूवमेंट के तहत जो खोले गए थे वहां जाने लगे। तो प्रभुपाद स्वामी जी ने इस कॉलेज से जो डिग्री मिलनी चाहिए उसे लेने से इनकार कर दिया था, मतलब असहयोग आंदोलन में आप कह सकते हैं कि सक्रिय रूप से भाग लिया था। चलिए बाद में फिर इन्होंने खासकर जो गौड़ीय परंपरा वैष्णव परंपरा होती है उसको आधार बना करके कृष्ण भक्ति का संदेश देने का फैसला किया, और इसके लिए 1966 में एक संस्था की स्थापना की जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसका नाम है इस्कॉन, ISKON, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, यानी कि जो कृष्ण की चेतना है उस कृष्ण की चेतना से संबंधित एक सोसाइटी, एक संगठन। और फिर इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वह है हरे कृष्णा मूवमेंट। ये जब आपस में मिलते हैं तो हरे कृष्णा कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। आपको इनके बहुत जगह पर मंदिर मिल जाएंगे, दिल्ली में तो बहुत बड़ा मंदिर है, उज्जैन में भी मुझे ध्यान आ रहा है शायद एक मंदिर बना है, हाँ बना है, बहुत जगह पर इनके मंदिर मिल जाएंगे। मुझे इनके मंदिर में जाने का मौका मिला है, खासकर ये जो गीता है, गीता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और प्रभुपाद स्वामी जी ने गीता की जो व्याख्या की है, ये पुस्तक मेरे पास है और मैंने बहुत ध्यान से इसे पढ़ा भी है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी प्रभुपाद स्वामी जी के बारे में। अब आप देखिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेसिकली 1950, मोटे तौर पर कह लीजिए 1950 के आसपास की बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जो भक्ति काल है वो 1950 की बात नहीं है, है ना। भक्ति काल को तो हम उधर 1600 के आसपास ले जाते हैं, तो इस समय इनसे भक्ति काल को जोड़ करके मैं क्यों मुख्य विषय बना रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण की जो परंपरा रही है, राम और कृष्ण की जो परंपरा है, वह मूलतः भक्ति काल से ही जुड़ी हुई परंपरा है, भक्ति काल की परंपरा। और भक्ति काल के बाद ही हमारे यहां एक प्रकार का अलग किस्म का रिनेसा पीरियड आया था, जिसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, जिसके अग्रदूत राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। और उसके बाद फिर आप देखिए कि किस तरीके से समाज सुधार संबंधी कई सारे आंदोलन पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उठकर खड़े हो गए। तो सच पूछे तो कहीं न कहीं उसकी जो पृष्ठभूमि बनी थी, जो समाज सुधार की पृष्ठभूमि थी, उसके बीज हमें भक्ति आंदोलन में दिखाई देते हैं। भक्ति आंदोलन के जब आप सामाजिक स्वरूप को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ बहुत अद्भुत बातें मालूम पड़ेंगी और पता लगेगा कि अरे ये तो क्रांति है, एक तरह से चेतना की क्रांति की बात कही जा रही है। आप कबीरदास को पढ़िए, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कबीरदास पर एक प्रश्न ही पूछा जाता है कि वो कवि थे या समाज सुधारक थे। अब सोचिए कि कवि थे या समाज सुधारक थे। हो सकता है कि समाज सुधारक वो मूल रूप से रहे हों और कविता को उन्होंने उसका माध्यम बनाया हो। मतलब इस तरीके से समाज सुधार की भावना भक्ति काल में बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। और उसका जो सबसे बड़ा तत्व रहा है दोस्तों, वो है कास्ट सिस्टम को अस्वीकार करना, जो समाज में जाति को आधार बनाकर जो ऊंच नीच की भावनाएं उस समय बहुत प्रबल हो चुकी थीं, जो हमारे भारतीय समाज को खंडित कर चुका था, कमजोर कर चुका था, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि अवसाद की स्थिति में समाज से कटकर जीने के लिए बाध्य था, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, यह भक्ति काल की बहुत बड़ी देन रही है। और आप देखिए कि भक्ति काल में बहुत से ऐसे कवि रहे हैं जिन्हें अगर हम जाति की दृष्टि से देखें तो वे आपको तथाकथित निम्न जाति में दिखाई देंगे, लेकिन जब उनकी भक्ति भावनाओं को आप देखते हैं, उनकी लिखी हुई कविताओं को जब आप पढ़ते हैं तो दंग रह जाना पड़ता है उनकी चेतना पर, उनकी रचनात्मकता पर, उनकी समझ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फिलॉसफी पर। तो ये प्रूफ करता है कि वस्तुतः जो ये चेतना है, फिलॉसफी है, ज्ञान है, भक्ति है, जाति पर आधारित नहीं है। तो इन्होंने जाति के बंधन को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भक्ति काल ने, और साथ ही साथ आचरण पर बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि भक्ति काल पर आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको उपलब्ध कराई जा रहे हैं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और विवेक कुमार आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।